नारायण जी पूर्ण है, रामचंद्र जी भी पूर्ण है, किंतु परिपूर्ण काम नहीं है, उनमें स्वागत नहीं है, भगवत्ता की सीमा नहीं है। कृष्ण तू कृष्ण को देखा, लाडली शक्ति उपाय स्मृति राधिका को देखा, और देखा क्या, उनके पीछे अपाक्ष में जड़ा शक्ति देखा, माया देखा, महामाया को देखा, जो त्रिगुणमयी माया है जिसके द्वारा ये संसार प्रतिभूत हो रहा है। और देखा जो लोग भगवान के विमुख हो रहे हैं, वो भगवान की तरफ से होकर के और चले जा रहे हैं, कहां माया की तरफ में गिर रहे हैं, काम क्रोध के दास हो रहे हैं और माया में पड़ रहे हैं। और जो लोग भगवान का भजन कर रहे हैं, जिस कपट रूप से गुरु सेवा कर रहे हैं, वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, उनको देखा क्या, संसार से निवृत्त होकर के योगमाया के प्रभाव से और वो भगवान की तरफ ले चली जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखा भगवान की समस्त लीलाओं को उन्होंने साक्षात दर्शन किया, जैसे हाथ में आंवला रखा है, सब जैसा सूर्य नारायण उन्होंने विचार किया। जो लोग इस तत्व को नहीं जानते हैं, कौन नहीं जानते, बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग उस समय में थे, वो लोग इस तत्व को नहीं जानते हैं, उन सब लोगों के लिए जैसे कि 60,000 या 80,000 ऋषि लोग थे, वही लोग तो भाग पद का संचालन करते थे, उसमें व्यास वशिष्ठ भी है, गौतम भी है, और सब इतने ऋषि थे, सब दुर्गाचार्य की भी है, और सब नवीकानंद वाले जितने सब ऋषि हैं, सब हैं। ये सब लोगों की धारणा ये नारायण ही सबसे बड़े तत्व हैं, और इसमें दास्य के रस के अतिरिक्त और सत्यवाचन मधु से उनकी सेवा नहीं की जा सकती है। इसलिए जितने भी जो जानने वाले नहीं है अजानता, उन सबके लिए शास्त्र भागवत की उन्होंने प्रकाश किया, लिखा नहीं, श्रीमद भागवत इसके पहले से ही है, जैसे कृष्ण लिखते हैं ऐसे श्रीमद भागवत भी लिखते हैं, उन्होंने उसको प्रकाश किया। इसलिए उन्होंने समाधि में जो देखा था उसी को दिखाना, इससे पहले से वो था, बस उसी को गलत पीछे से अक्षरात्मक रूप में उसका पता गणेश चंद्र जी से लिखवाए, अपने आप बोलते गए, गणेश को अभिमान था कि मैं शिक्षा का सम्राट हूं और हमको ये लिखने के लिए मुहर्री बना रहे हैं, कुछ अभिमान था। उन्होंने कहा कि मैं लिखूंगा, इसे यदि हमारी लेखनी बंद हो जाएगी तो फिर कलम नहीं उठाऊंगा, और ये ठीक है ऐसा ही हो, किंतु मेरी भी बात नहीं समझेगा तो कलम मत उठाना, समझ करके तो कलम उठाना, नहीं तो ये हाथी का जो तुम्हारा तीर है वो फट जाएगा, कितना तीर हो जाएगा, संभाल करके लिखना आरम्भ किया, बड़े चाव से लिखा, ऐसे जल्दी लिख करके अपने ग्रहण दे दे, मैं मुझे प्रतीक्षा न करने पड़े, और व्यास कर रहे हैं उसमें ऐसे गंभीर भाव युक्त और भाषा क्लिष्ट और समाज संधि से युक्त ऐसे श्लोक प्रकाश करते थे कि वो दिमाग में नहीं आता, बस कलम लेकर के हाथ यहाँ पर रख लेते, और उसमें हजारों श्लोक पढ़ा, उसी सब श्लोकों को व्यास की तरह पंडित लोगों की समझ में नहीं आता, व्यास जी से कृष्ण गोस्वामी ने सीखा, सुखदेव जी से सुख गोस्वामी ने सीखा, उस परंपरा की धारा में जो आएंगे वो तो समझे, और कहीं तो कैवल्य प्रयोजनम जहाँ है, श्रीमद भागवत का जो अंतिम सार बतला है कैवल्य प्रयोजनम, उसको कारण यही सबसे यही सब जाति ने खबर था बिना समझे में मत लिखना, गणेश जी का उत्थान और समझने में उनका कितना समय लग जाता था, गणेश जैसे नहीं इतना बड़ा, इसलिए श्रीमद्भागवत विद्यापुर थी या सीता के द्वारा भी समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में लिया तो उपलब्धि नहीं होगी। श्रीमद्भागवत जो है साक्षात कृष्ण है, इसलिए कृष्ण को समझना है विद्यापुद्धि बल के द्वारा हम समझ लेंगे, सीता के द्वारा नहीं होगा। वो कभी कठिनित हो जाए तब तब उन्हें देखा देख करके और किसके लिए जो नहीं जानते हैं इन तत्वों को उन लोगों के लिए जिसको बता दिया। जानने में हम समझते कि इसमें विश्व का कोई भी नहीं, इसमें भी जानने वाला नारद जी थे या उनके पराशर जी थे, उनके जो परिकर लोग थे वही जानते हैं चीजें से, किंतु व्यास जी के लिए व्यास के अतिरिक्त भगवत सत्व हुए बिना पराशर भी नहीं इसको प्रकाश कर सकते थे, नारद जी भी नहीं कर सकते थे। नारद जी कर सकते हैं किंतु इनके लिए जैसे उस सभा में परिचित की सभा में व्यास प्रवचन कर सकते थे कि नहीं, नारद जी नहीं कर सकते थे किंतु उन्होंने व्यास के लिए क्यों छोड़ा, इसमें प्रतिष्ठित इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत का प्रकाश किया। एक विषय को प्रकाश करने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत होती है, उसे इतर वस्तुओं का भी वर्णन करना पड़ता है, बिना इतर वस्तुओं के वर्णन के इतर मैंने समझ रहे हैं। कृष्ण का जब वर्णन करेंगे तो उसे बराबर वाले जो तत्व दिखते हैं उनका भी वर्णन होगा, और तब उसके विषय को समझेंगे। यदि कृष्ण आए कंस अघासु बकासु जरासंध काल जमन ये नहीं आते, महाभारत युद्ध नहीं होता, तो कृष्ण का ये जो सब तत्व है प्रकाशित होता नहीं। कुछ कुछ प्रकाशित होने पर भी इन लोगों के द्वारा यदि नंद बाबा यशोदा जी सुबंध सिद्धांत ललिता विशाखा राधिका जी के साथ में नहीं आती तो कृष्ण का वो माधुर्य प्रकाशित होता नहीं। प्रकाश करने के लिए उस तपस्य चीजों का भी गौरवों का भी वर्णन होना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत एक परिपूर्ण अखंड तत्व है, इसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो वेदों में पुराणों में उपनिषदों में महाभारत में या किसी भी शास्त्र में जो वर्णन किया जाएगा श्रीमद् भागवत में सबका वर्णन। सृष्टि तत्व से आरंभ किया, सृष्टि तत्व कुछ भगवत तत्व से अलग नहीं है, उसे लगी हुई है किंतु फिर भी वो भगवत तत्व नहीं है, किंतु भगवत तत्व से अलग ही नहीं है। रीते अर्थम प्रत्येक न प्रत्येक का आत्मनी रीते अर्थम, अर्थ जो है उससे अतिरिक्त हो, अर्थ क्या मान छब्बीस तत्व रीते अर्थम वो नहीं, रीते अर्थम जत प्रत्येक जो प्रतीत होता है, न प्रत्येक से आत्मनी आत्मा में भी प्रतीत नहीं होती है, आत्मी मन वहां पर समर्थ वो चीज है माया, कौन जड़ा माया महामाया के लिए, और जो मूल माया है वो तो भगवत तत्व में उसके लिए नहीं करता है। तो व्यास जी ने इन सब चीजों का खूब अच्छी तरह से विचार करके उन्होंने माया तत्व का कृष्ण सर्ग का किस सर्ग का कृष्ण के लीलाओं का अवतारों का जितनी प्रकार की हो सकती है चीजें ये सब एक से नौ तक उन्होंने ये सब का वर्णन किया और बोला बोले क्या कथाइना से कथिता महीयताम विधाय लोके सुजत परे इंसान विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो वचो विभूतिर्न तु पारमाख्यात् जतु श्लोकगुणानुवाद प्रस्तूयते अभिघ्नम् अम्मम मङ्गलघ्नम् तमेव निजम् सूर्यादभिघ्नम् श्रीदे मलम् भक्तिमलम् अभिस्मिता मान तथा नास्ते कथिता मध्य। हमने व्यास एक बदला है, हमने श्रीमद् भागवत में कथा नास्ते कथिता महीनता जो मदीयता महापुरुष लोग हो गए हैं कौन सृष्टि के प्रारंभ से ही कौन उत्तम पिताजी मुस्तानसार मनु शंभ मनु और इनके वंश में होने वाले सूर्य वंश चंद्र वंश और उसमें बड़े बड़े प्रतापी सागर सागर महाराज और बड़े बड़े प्रतापी ये सब लोग उनका नाम कबीर किया। दोनों प्रकार के अति प्रवृत्ति थे और जो इन सब महात्माओं का बड़े बड़े लोगों का उन्होंने वर्णन किया है। मैंने लोकेश पर जैसा परिणाम उनका वर्णन हमने किया, किसने किया? वैज्ञान विज्ञान वैराग्य विलक्षण आदि हो एक से लेकर के दस नौ स्कंध तक के वर्णन किया। ये विज्ञान जैसे कि उनका ज्ञान हो और उसके साथ साथ में विज्ञान विज्ञान किसको कहते हैं? अनुभूति सहित ज्ञान को और रहस्य किसको कहते हैं? तो ये ज्ञान और वैराग्य जब तक बीचों में वैराग्य नहीं होगा अन्नाभिलाषिता दूर नहीं होगी भाई, तब तक शुद्ध प्रेमा भक्ति का उदय नहीं होगा। इसलिए वैराग्य की भी जरूरत है। जब तक वैराग्य नहीं होगा तो शुद्ध भक्ति में प्रवेश कैसे करेगा? किंतु एक बात और है, ऐसा समझ करके केवल वैराग्य की ही चेष्टा करो तो लाभ जीवन में भी तुम्हारा भगवान के प्रति अनुराग नहीं होगा। ये कैसे होगा? भगवान की कथाओं का विशेष विशेष मधुर जो कथाएं हैं विक्रीतान इस श्लोक में ये वर्णन किया। यदि कामना जाकर दूर नहीं होगी ये कैसे दूर होगी? भगवान की लीलाओं के श्रवण करने से अपने आप धीरे 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 दूर होगी, श्रद्धा बढ़ती जाएगी और कामना भी सब भगवान की कथा सुनेंगे नहीं, लीला कथाओं का श्रवण नहीं करेंगे, हरिनाम रचना नहीं करेंगे। हम पहले अनर्थ को दूर करेंगे, वैराग्य हृदय में आएगा, सब भक्ति होगी। ये कोटि जन्म निकले ये वैराग्य दूर होने का ये उपाय। इसलिए महापुरुषों का चरित्र वर्णन, प्रहलाद महाराज जी का चरित्र वर्णन किया, अजामिल का चरित्र वर्णन किया। इसलिए इन महापुरुषों को कैसे बढ़ा गया है? प्रहलाद महाराज जी का, अजामिल जी का ये सब वर्णन किया, भवाटी का वर्णन किया, माया क्या चीज है, चित्रकेतु महाराज जी का उपाख्यान वर्णन किया, धीरे 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 रामचंद्र जी का वर्णन किया, कृष्ण का भी संक्षेप में उच्चंद्र वंश का वर्णन किया, राजाओं का महिमा वर्णन। जब समाप्त हो गया तब विज्ञान वैराग्य विदिक्षया विभो पचो विभूतुम विभूति न पचो विभूति न पामता। ये जो वचन हमने वर्णन किया है ये वैराग्य और किसके लिए? विज्ञान के लिए। ये केवल बाघ वही खरीद है, कृष्ण की लीला इसमें नहीं आई। बाघ वैखरी का मैंने वर्णन किया, न तो परमात्मा परमार्थ के लिए आसन शुद्ध होने के लिए मैंने किया। आसन जब शुद्ध हो जाएगा तो वहां पर भगवान बैठेंगे, इसलिए वर्णन किया। जब ये हो गया तो क्या करेंगे? जब तो उत्तम श्लोक अपना अनुवाद, यहां पर उत्तम श्लोक जो भगवान है उनका जो लीला चरित्र वर्णन हमने किया, प्रसूयते अभिक्षणम अमंगल अपना, अमंगल को दूर करने वाली भगवान की लीला कथाएं हैं, जिसके अतिरिक्त और कोई अमंगल दूर नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने बताया थोड़ा दसवें स्कंध का तृतीय श्लोक निवर्त सतान का एक उपगीयमाना बहुत सदा श्रोत्र गुणों विराना कौतम श्लोक गुणानुवादा किरण जीत बिना पशुना आत्मघाती व्यक्तियों के अतिरिक्त और क्या सोचा व्यक्ति है? कर्मी ज्ञानी योगी कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान की लीला कथाओं में जिनकी सब लोगों को भगवान की लीला किसी से यह मंगल दूर होंगे? समय वनितम सुनिया, तुम लोग वही सुनो। क्या सुनो? ये जो लीलाओं का वर्णन हमने दशम स्कंध में जो लीलाओं का जो वर्णन किया है और विशेष करके राजपंचायत है, अधिकारी व्यक्ति उन सभी लाभों का अनुशीलन करें, अनाधिकारी व्यक्ति नहीं। समर करते करते नौवें स्कंद तक पर उनको अधिकार है। जब अधिकार हो जाएगा तब तो उनकी लीला कथाओं में बाल लीला श्रवण करे, इसके बाद में पौंड लीला श्रवण करे। जब ठीक हो जाए या ठीक चल रहा है तब क्या करेगा, उनकी पूर्व रात की बातें सुने और उसके बाद में सब फिर और सब कथाएं सुने, गोपियों का रात लीला और एक ही बार पेड़ पर चढ़ गए और फल तोड़ने लगे या बैल गया चाह नहीं होगा तो वहां से पसंद होने की। इसलिए कहते हैं कि हमने इसको वर्णन किया, जिसको भक्ति की इच्छा है, भक्ति अभी सुनाना, जिसको भक्ति की इच्छा है कौन निगम कल्प स्वरूप फलम, जिसको निगम कल्प स्वरूप फल की जरूरत है, आवश्यकता है, वो फल क्या है, भक्ति ज्ञान कर्म इत्यादि मुक्ति इत्यादि का फल नहीं है। तो जिसको उसकी आवश्यकता है वो क्या करेंगे, कृष्ण की अमला भक्ति, अमला भक्ति जिसको जरूरत है वो क्या करेंगे, नित्य उन कथाओं का आक्रमण करें और इधर उधर में कोई प्रयास न करें। उन्होंने भगवान की कथाओं से पहले श्रीमद् भागवत के सर्व संघ में समस्त लीलाओं का वर्णन किया और उसके बाद में इन सब लीलाओं का विशेष विशेष लीलाओं का वर्णन पीछे से किया। दशम स्कंद बताए हम इसमें से दो चार लीलाओं का वर्णन करते हैं, आरंभ करते हैं। आज सभी लोग एक लिस्ट बना लीजिए, बना सकते श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद से हम आरंभ करेंगे। संध्या का चलेगा 5 बजे तक, मुझे जब भी अवकाश मिल गया तो 5 बजे करके 6 या 7 तक मैं पाठ करूंगा और मैं तो ये लगातार चलता रहेगा। ऐसा मत करेंगे जो सभी लोग दोपहर में कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, पानी भी नहीं लेंगे तो नींद आ जाए। कभी कभी साधारण लोगों को यदि खूब खा लिया तो भी नींद आती है और यदि कुछ नहीं खाया तो फिर घूमने लग जाएगा और नींद आने लग जाएगा। तो ये दोनों चीजें ना, आज हम लोग चेष्टा करेंगे सभी लोग ये सवेरे से और रात में 12 बजे तक हम लोग हरिनाम करेंगे, भागवत पाठ करेंगे, सुनेंगे कृष्ण की लीला के लिए किस प्रति में लगा सुने प्रयास लगे और उसके बाद में फिर 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक कृष्ण इत्यादि होगा विभिन्न लोगों और के लोग आएंगे वो लोग सब करेंगे और 11 से या 11:30 से 12 तक प्रवचन होगा विभिन्न लोगों का और रात में 12 बजे जन्म होने के बाद में 12:30 बजे तक उनका महाअभिषेक किया जाए और फिर दूसरे दिन ठाकुर जी को ये सब स्नान कराने इत्यादि के बाद में नंद दोपहर में भंडारा इत्यादि खूब उत्साह के साथ में, जैसे कल संकीर्तन में बड़े उत्साह के साथ में हम लोग का उत्साह यदि देखेंगे ना उत्साह के लोग भी उत्साहित हो गए। आप लोगों में बहुत विशेष उत्साह था, मठवासियों में मठ के अंदर जनों में था, सब लोगों को उत्साह नीचे से ऊपर था। ऐसे उत्साह नहीं होने से नहीं होता, मथुरा की थी इसी रंग में महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु का रंग में रंग गई था। सब जगह लोगों ने आरती किया, सब लोग इसमें स्त्री महिलाएं पुरुष लोग सब लोग जो इसमें सम्मिलित हैं वो भी आ सके, पानी पीने की शरबत पीने की सब प्रकार की उन्होंने। तो आप लोगों को विशेष रूप से भगवान कृपा है, गुरु की कृपा है और जो इसमें सम्मिलित हुआ वैसे थे गुरु जी भगवान हरि गुरु वैष्णव पिता है। ऐसा उत्साह होना चाहिए, कोई अवसर भी आए गलत होने के लिए मन खराब गया नहीं, इसमें नहीं खराब कर किसी कार से कोई कुछ हो गया हम सतर्क हो गए। सतर्क होना भक्ति के लिए बड़ा भारी खतरनाक है, कभी भी किसी स्थिति में गुरु वैष्णव कोई शासन भी कर दे तो भक्ति से सतर्क मत हो, हम नहीं करेंगे, हम अलग हो वंचित हो गया तो हमारे जीवन जन्म गड़बड़ी। इसलिए कल लोगों का भी उत्साह देकर के हमें भी उत्साह बुखार से उठाता तभी हम भी पैदल तक इसी तरह से सब में उत्साहित रहेंगे। उत्साह ये सतत कर्म है जन्माष्टमी का, ये साधारण कर्म नहीं है, सतत कर्म है भगवान के लिए। ये सब कर्म इसे भगवान की कथा है, हृदय में स्फूर्ति प्राप्त होगी, भागवत स्फूर्ति होगी। तो आप सभी लोग एक चीज बना लेंगे जो हिंदी में कर सकेंगे वो हिंदी का वो भागवत का ले लेंगे, और नहीं तो ये श्रीमद भागवत पाठ करेंगे
बंगला
संक्षेप में ही उसका वर्णन करते करते जहां तक चला जाए। तो किसी चीज को प्रतिष्ठित करने की कोई जरूरत नहीं है, संक्षेप में पढ़ते और उसको बतलाते थे। कई कई पर्वताए पा रहे हैं कोई समझे और ना समझे, हम लोग उसे समझते हैं कि एक श्लोक भी यदि अच्छी तरह से समझ करके किया जाए हृदयंगम हो जाए तो वो भागवत भागवत। सात दिन भागवत हो रहा है किसी के समझ में कुछ पल्ले नहीं पड़ा है, वो बल्कि भागवत भागवत। इसलिए इसको ऐसे भी किया जाए जिससे कि सब लोग समझे। अभी लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट बना करके विनती से विनती के हिसाब से करें, और उसके बाद में विधस्त लोग भी इसमें रहेंगे, वो लोग भी हिंदी का भागवत लेकर के। हम एक देखते हैं अंग्रेज लोग हैं, उनकी पूरी इच्छा और कुछ देखते क्या स्वामी जी अमेरिका गए जाकर उन्होंने शिष्य किया, और उनके शिष्य जो है गुरु परंपरा संस्कृत बंगला वाला याद कर लिया, और जितना बंगला का कीर्तन है वो सब याद कर लिया। भले उनका स्वर जैसा भी होता है किंतु सुनने में बड़ा सुखद लगता है, जैसे तैसे भी करते हैं हम लोग जैसे स्वर सुनने होंगे। किंतु भागवत में देखते हैं हम लोग मथुरा में आए कितना वर्ष हो गया, करीब करीब 54 में आए, किंतु किसी को बंगला कोई चीज बन जाए वो अब चाहे जैसे यहाँ पर भ्रष्टा कीर्तन होता है इसलिए हम लोग भी उसी में हम लोग सीख दिए, किंतु यहाँ के लोग जो गुरु परंपरा वाले थोड़ा सा वो बाकी थोड़ा सा और किसी में नंदी वर्ग के हैं और लोग हैं उनको कुछ भी बंगला का याद करना चाहिए। हमारे कुछ लोग हैं ब्रह्मचारी में भी पता ही है भाई हिंदी में तो कुछ होता नहीं, हम लोग क्या करें तो छोड़ करके भागने की चेष्टा कर। और अंग्रेज को देखिए छोटे से बच्चे लेकर के स्त्रियां पुरुष का कितना बंगला का कीर्तन है, वैसा कीर्तन हिंदी में या विश्व के किसी भाषा में नहीं है, सही है। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल की तो हिंदी के किसी ग्रंथ में है कहीं भी, विश्व के किसी साहित्य में नहीं। उनको सीखने की चेष्टा करना चाहिए और उनके सब को करना चाहिए, हिंदी का भी हो ऐसा भी हो। तो हम लोग वहीं से आराम करते हैं थोड़ा सा, इसके बाद में अभी आप लोग सुनेंगे भी नहीं, और जहाँ पर हम सभी मिल करके सुनेंगे कीर्तन करेंगे, और साथ में सेवा में भी त्रुटि नहीं हो। हम समझते कि कल सभी लोग क्लांत हो गए हैं, अभी बर्तन अभी अपेक्षा कर रहे हैं ये हमारी सेवा नहीं की गई, तो उनकी भी सेवा करनी है ना, नहीं करेंगे तो फिर यहाँ नहीं कुछ पहुंच सकेगा। वो वैसे प्रभु है सबसे पहले, इसलिए ये घर प्रभु है, बर्तन प्रभु है और रसोई प्रभु है, इनकी सबसे पहले सेवा करनी पड़ेगी, आगे तो सब तप्त हो जाएगा मामला सब कुछ, इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए और ये भी करना चाहिए। दोनों दूसरे के पूरक हैं, अपराधा है वो भी अर्चन है, ऐसा मत नहीं है तो वो थर्ड क्लास का वो भी भगवान का ही अर्चन है, नहीं तो ठाकुर जी का दर्शन यदि नहीं मिला है तो अर्चन होगा, ये कभी संभव नहीं। इसलिए सभी काम को ऐसा समझ करके उत्साह के साथ में करेंगे, ऐसा नहीं कि क्यों हरिनाम करते हैं तो प्रभुपाद जी का देंगे तो नाम काशी माला
काशी जाना
ऐसा नहीं, हम आपके साथ रहो, सेवामय जीवन को, जो सेवामय जिनका जीवन होता है वो एक मिनट चुपचाप नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करे, चाहे बिगड़ जाए काम, चाहे अच्छा हो, किंतु कर दीजिए। गुरु जी ऐसे लोगों को पसंद करते, ऐसे सेवकों को कुछ तोड़ भी दे कोई बात नहीं, किंतु लगाता हुआ है अच्छा बनाने के लिए चेष्टा करते, कुछ हो गया गड़बड़ कोई बात नहीं, प्रति वर्षी से ऐसा नहीं जैसे दिल्ली के बच्चे जैसे हम करके काम के लिए उत्साह इस तरह से हम लोग चलेंगे। ग्रंथ में सबसे पहले जैस जी कह रहे हैं परीक्षितम, परीक्षितम उपाख्यानम नाकोख्यानम एव च प्रायोपवेशु राजसि प्रतापात परीक्षिता, यही से आरंभ किया इसे द्वादश इस ग्रंथ में। सुखदेव गोस्वामी के सही सबसे पहले परीक्षिति का संवाद हुआ, परीक्षित महाराज को सांप का वर्णन किया, सांप कैसे होता है, कोई चीज व्यक्ति असंतुष्ट होकर के सांप काटता है, साधु संतों का सम्मान यथाजुक्त नहीं देंगे तो क्या होगा, यदि कुछ बोलेंगे भी नहीं तो उनके भीतर से कुछ हो जाएगा, इसलिए उसको कहते हैं अवज्ञा, पानी के द्वारा शरीर के द्वारा नहीं किया, मनी मन भी यदि किया तो क्या हो जाएगा, अवज्ञा, इसलिए अवज्ञा भी मत करो। इसलिए काम हम साथ लिए था आदर करो, कैसे प्रणाम प्रणाम करके बस नहीं, उसके साथ अपने मन को भी जोड़ो, मन साथ की मन के साथ, इसलिए सुखदेव जी का परीक्षित महाराज के संवाद में कैसे परीक्षित का संवाद हुआ, सुखदेव गोस्वामी सुनिए परीक्षित महाराज जी अभी संवाद। उन्होंने देखा एक साधु बैठा है, पानी मांगा, पानी नहीं दिए, सदा लोग समझते कि पानी देंगे अन्न देंगे आदर करेंगे, मर जाएंगे तो साधु लोग फेंक देंगे, उनका ये सब काम समाज संस्कार उनका काम, और पानी नहीं दिए तो क्या दिए, और पानी नहीं आते तो बिगड़ गए, और कहते तुमको पुरस्कार देते हैं कैसे आप का स्वागत करो, माला से किस चीज की माला, आप जैसे व्यक्ति हैं आपके लिए बनेंगे सब की माला उचित है, बस हम से तुम उठा कर तुम निकल, और उनके लड़के ने देखा और वो रोता हुआ आया, हाथ में पानी दिया, पांच वर्ष का थी और उनकी आचमन दिया, और कहा दिया केवल जब सबका दिवस कष्ट तुम्हें दसेगा, कोई भी रक्षा नहीं करेगा, और हम इतने दिन भजन करते हैं तो किसी को बात करने जाओ तुम मर जाओ तुम्हारा सर्वनाश होगा, क्यों भाई वैसे कहती है बात, हमने देखा है यदि आप 12 वर्ष तक सच बोलिए, 12 वर्ष का एक वर्ष भी सच बोलिए, आप जो कहेंगे वो सत्य हो जाए, निश्चित रूप में होगा वो सब, इसलिए ऐसा अभ्यास रखना चाहिए, परीक्षित महाराज जी को साफ दे दिया, उनको पता लगा जब सोचने से बड़े सोचने से जब ही पता लगा, ऋषि के लड़के ने साफ दे दिया है, बड़े प्रसन्न हुए, कैसे बच गया, हमारी भक्ति वृत्ति के ऊपर में उसने कोई बाधा नहीं, उसको नष्ट नहीं, शरीर को नष्ट आज नहीं होगा कब होगा, ये कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, मरना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, उनसे डरना नहीं चाहिए, डरना किस चीज से, ऐसा कोई भी कर्म नहीं होना चाहिए, क्रिया नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, यह हमारी भक्ति वृत्ति आत्मा की वृत्ति जो है नष्ट हो, जब ये हो गई तो सब हो, ये कैसे होगा, वैष्णव अपराध से, इसलिए हम समझते हैं कि जो लोग वैष्णव अपराध से अपराध इत्यादि से दूर हमें की चिंता नहीं करते हैं और भजन करते जाते हैं, उनकी भजन सीखी नहीं, बक्सी विनोद ठाकुर जी ने भी बतलाया है, मुझे याद है। जो लोग संघटन तो करते हैं किंतु नस्ल निवृत्ति और अपराधों से बचने की चेष्टा नहीं करते हैं तो संघटन की स्थिति नहीं। इसलिए हम लोग इस पर भी जोड़ते हैं सकारात्मक अनुकूल और प्रतिकूल, प्रतिकूल को दूर रखते हैं, अनुकूल को ग्रहण करते हैं। पूजा के भगवान की बड़ी कृपा हुई और छठ को हर दर्शन के लिए गंगा नदी के तरफ कर दिया और बैठ करके खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, भगवत चिंता कर इसमें बेपार के पास तरफ नहीं। कैसे भक्त वक्त के जितने भी बड़े बड़े संत थे, बच्चे गौतम हारी अंगिरा ऋषि नवदेवेंद्र जितने थे, कभी हबी अभिनता स्थित किया और वहां के ऋषि लोग सौनक इत्यादि ऋषि लोग ये सब लोग वहां पर कैसे पता चला। आजकल तो बेकार का काम है, आजकल तो रेडियो हो गया है और सब क्या टेलीविजन हो गया है, इसके बारे में